बीबीसी इंडिया बोल। 27 अक्टूबर दिन शनिवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के दो उच्च अधिकारियों के बीच विवाद से एक संस्था के तौर पर सीबीआई की साख को कितना धक्का पहुंचा है और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। केरल पुलिस का कहना है कि संदिग्ध हिंदू कट्टरपंथियों ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करने वाले एक धर्मगुरु के आश्रम पर हमला किया है। पुलिस का कहना है कि तिरुवनंतपुरम में हमलावरों ने आश्रम के बाहर खड़ी दो कारों और एक स्कूटर को आग लगा दी। धर्मगुरु संदीपानंद गिरी ने सबरीमला मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय टीवी चैनलों के पुनर्प्रसारण पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भारतीय टीवी कार्यक्रमों पर रोक लगाने को ये कहते हुए जायज ठहराया कि पाकिस्तान में आने वाली नदियों का पानी वो रोक रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले निचली अदालत द्वारा भारतीय चैनलों पर लगी रोक को हटाने के फैसले को रद्द कर दिया था। भारतीय फिल्में और टीवी कार्यक्रम पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय हैं, मगर पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत अपने यहां से होकर पाकिस्तान में आने वाली नदियों पर बांध बनाकर इसका पानी रोक रहा है। भारत इन आरोपों को गलत बताता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद को भंग कर दिया है। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटा दिया था। इस तरह से श्रीलंका में राजनीतिक संकट गहरा गया है। गुरुवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में सिरिसेना ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। 16 नवंबर तक संसद भंग करने के फैसले को राजपक्षे को समर्थन जुटाने के लिए समय देने के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की तुर्की स्थित वाणिज्य दूतावास में हुई हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर उसके यहां मुकदमा चलाया जाएगा। आदेल अल जुबेर ने बहरीन में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इस तरह से सऊदी अरब ने साफ संकेत दिया है कि इन लोगों पर मुकदमा सऊदी अरब में चलाया जाएगा, जबकि तुर्की ने मांग की थी कि इन संदिग्धों को तुर्की में मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित किया जाए। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि मीडिया ने जांच पूरी होने से पहले ही पूरा दोष सऊदी अरब पर मढ़ दिया है। वहीं न्यूयॉर्क स्थित कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के उपनिदेशक रॉबर्ट मोहनी ने बीबीसी से कहा कि खाशोजी की हत्या बताती है कि सऊदी राजशाही की आलोचना करने वाले पत्रकारों के साथ क्या हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि शाही परिवार या वहां की सरकार अपने आलोचकों या स्वतंत्र पत्रकारों को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब जमाल खाशोजी देश छोड़कर अमेरिका आए थे तो हमें पता था कि वो वहां पर खुलकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये घटना हमें दिखाती है कि अगर आप विदेश में जाकर भी मुंह खोलेंगे तब भी सऊदी राजशाही आपका पीछा कर सकती है। ये थे कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के उपनिदेशक रॉबर्ट महोनी के शब्द। फलस्तीनी लड़ाके समूह इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि उसने मिस्र की मध्यस्थता के बाद हुए युद्ध विराम के चलते दक्षिणी इसराइल पर रॉकेट हमले करना बंद कर दिया है। अपने ऊपर रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने लगातार कई जवाबी हमले किए थे और फिर शुक्रवार को इसराइली सैनिकों की गोली से 5 फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई थी। हमास के प्रवक्ता फावजी बरहम ने इन हमलों को लेकर कहा, सैन्य समूहों और फलस्तीनी प्रतिरोध वाले धड़ों के हिसाब से देखें तो इस मामले के बढ़ने और हमलों के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हमारे लोगों, नागरिकों और फलस्तीनी प्रतिरोध के ठिकानों पर होने वाले हमलों का जवाब देने में बरते जाने वाली सावधानी को भी हम बदल सकते हैं। ये थे हमास के प्रवक्ता फावजी बरहम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध के राजनीतिक समाधान के लिए रूस, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी के बीच इस्तांबुल में बैठक चल रही है। इसमें विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इदलिब में युद्ध विराम को मजबूत करने पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही पुनर्निर्माण और शरणार्थियों को लेकर भी विचार हो रहा है। इस मीटिंग से पहले चारों देशों ने माना कि इस बैठक को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हुआ जा सकता और ये नहीं माना जा सकता कि वो तुरंत किसी समाधान पर पहुंच जाएंगे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। इस बार चर्चा का विषय निकल कर आया है सीबीआई से, जहां बीते एक हफ्ते से उठा पटक मची हुई है। घमासान की वजह सुनिए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से।
एक विवाद था और विवाद ये था कि एक ही केस में एजेंसी उसके डायरेक्टर का एक मत था, स्पेशल डायरेक्टर का दूसरा मत, कि भ्रष्टाचार के आरोप किसके खिलाफ सही है। वो एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच करती है उसके बड़े दो अधिकारी किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का शिकार बन जाए तो यह देश के हित में है कि सच सामने आए।
ये थे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। अजय जी, आपने भी सुना, आप जी, इस पूरे विवाद को किस तरह देखते हैं?
नहीं, ये बड़ा, जैसा अरुण जी ने भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है कि सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में जिसकी तरफ देखा जाता है कि कोई अगर अपराध होता है, आर्थिक हो चाहे और अपराध हो, उसका सच्चाई ये लेके आते हैं, और वहाँ पे जो दो टॉप एजेंसी के ऑफिसर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसने घूस लिया, तो ये तो अजीब सी स्थिति है। हमें नहीं याद है कि एजेंसी का लंबा इतिहास है, लेकिन एजेंसी के इतिहास में इस तरह की कोई इंसिडेंट ऐसा पहले हुआ है, तो ये तो आश्चर्य की चीज़ है। और ये एक साल से चल रहा था और लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, तो वो एक ज़्यादा बड़ा आश्चर्य है।
सीबीआई के हेडक्वार्टर पर सीबीआई ने खुद छापा मारा, ऐसा वाकया पहले कभी कोई याद नहीं आता आपको?
नहीं, आपको वो तो छोड़ दीजिए, एजेंसी के नंबर वन नंबर टू के झगड़े हुए हैं किसी इश्यूज पे। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं केसेस में जिसमें कि जो नीचे के ऑफिसर हैं वो ऊपर के ऑफिसर से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन हर बार ये आदमी जानता है कि ऊपर के ऑफिसर को ये अधिकार होता है कि अगर नीचे वाला एग्री नहीं कर रहा है तो भी वो अपना ओपिनियन रख दे, और ये सब ऑन रिकॉर्ड होता है और ये बड़े एक डिसेंट वे में होता था।
और झगड़े हुए भी हैं तो इस तरह सामने कभी नहीं आए।
नहीं नहीं, ये तो गैंग वॉर जैसे हुआ,
गैंग वॉर की तरह हुआ। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं, और शीशे के उस पार बैठे हैं स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम, जो हमें श्रोताओं से जोड़ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करते हैं बीबीसी इंडिया बोल में। आज पहले श्रोता कौन है?
हेलो, नमस्कार सर।
जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
योगीराज मस्के बोल रहा हूँ, बेतुड़ा भोयर जिला वाकिंग से बोल रहा
हूँ। योगी राज जी, एक बार फिर से बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
बेतुड़ा भोयर ग्राम है, पड़ता है वाशिम जिला में, महाराष्ट्र में।
वाशिम महाराष्ट्र से। योगीराज जी, ये बताइए कि जो सीबीआई में पिछले एक हफ्ते से विवाद चल रहा है, जिस तरह की खबरें आप देख सुन समझ रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे पहला रिएक्शन आपके मन में क्या आता है, क्या सोचते हैं आप?
सर, कोई भी संस्थान हो, ये जो राजकीय हस्तक्षेप वाली बात आती है, इसका जो मेन इश्यू ऐसा है कि कोई राज्य के लिए काम ही नहीं करना चाहता है यहाँ पर, कोई प्रशासक हो या शासक भी हो, क्योंकि ये आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं, तो ये राष्ट्र के लिए क्या कर रहे थे? ये तो सामान्य नागरिक के नाते मैं यही कहूंगा कि भाई आप वहां पर है तो आपसी झगड़ों में उलझेंगे या राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे?
वाशिम महाराष्ट्र से हमारे श्रोता योगीराज कह रहे हैं कि सीबीआई के अफसर भी आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं, राष्ट्र के लिए कब क्या करेंगे। अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी
राजेश कुमार शुक्ल बोल रहे हैं सर।
शुक्ल जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
हम उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के बहादुरपुर गांव से बोल रहे हैं।
शुक्ल जी, बहुत स्वागत है आपका, मुझे लगता है कार्यक्रम में पहली बार फोन लगा है आपका।
जी 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 सर, पहली बार हमारा फोन लगा है, बहुत दिन से लगा रहे थे, आज लगा है।
चलिए आज लग गया और आपका बहुत बहुत स्वागत है।
30 अक्टूबर 1984 से हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
बताइए, 3 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है आपका और हमारा संबंध अभी भी बना हुआ है।
जी सर, अभी बना हुआ और रेगुलर बना हुआ है।
बिल्कुल बना रहेगा। शुक्ल जी, रखें अपनी बात, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर?
हमारा मतलब इतना है कि जो हमारी भारत सरकार बनती है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए और उसको अक्षुण बनाए रखना चाहिए, अन्यथा जो है जो लोकतंत्र का पहिया है वो डगमगा जाएगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो CBI हो, चाहे IB हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे CVC हो, संसद हो, अगर इन लोगों को छेड़ा गया सर तो लोकतंत्र को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए एक प्रचंड बहुमत की गवर्नमेंट की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को सर बनाए रखें। हमारा बस इतना मतलब है।
बहुत शुक्रिया शुक्ल साहब। अजय जी, राजेश शुक्ल थे ये श्रोता उत्तर प्रदेश बस्ती से, और इस बात पे उन्होंने बहुत जोर दिया है साफ तौर पर कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अक्षुण्य बनाए रखा जाए किसी भी तरह के दबाव से। CBI पर, CBI स्वायत्त होकर, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त होकर काम करती है।
देखिए, हम दोनों लोग जो फ़ोन किए उनकी बात सुन रहे थे और आप देखिए, मतलब जो ऑर्डिनरी लोग हैं, दूर बैठे हुए हैं और बहुत दूर बैठे हुए हैं, वो लोग कैसे चीज़ें समझते हैं। पहले साहब जो थे उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में आप कैसे काम करेंगे। सवाल बड़ा साफ है कि अगर आप आपसी झगड़े करेंगे तो राष्ट्रहित कैसे करेंगे। और दूसरे साहब ने कहा कि विश्वसनीयता। ये बात सच है कि CBI की ऑटोनॉमी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आपने दे भी दी और उसके बाद भी कहीं ये लगता है कि विश्वसनीयता नहीं है, तो ये लोगों के जहन में है कि आखिर ऐसा क्यों है। और अगर प्रचंड बहुमत मिल गया है और उसके बाद भी नहीं है तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि वो उसको रखे। तो ये सारी बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और लोग इसकी बात कर रहे हैं। हमें तो ये आश्चर्य लग रहा है कि लोग इसको अच्छी तरह, हमें जितना लगता था उससे ज़्यादा समझते हैं।
आपने विश्वसनीयता और निष्पक्षता की बात की। CBI की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि विश्वसनीयता और निष्पक्षता जो उनका उनका ब्रह्म वाक्य है, सूत्र वाक्य है जिसका वो पालन करते हैं, और श्रोता उसी पर सवाल उठा रहे हैं। अगले कॉलर को, अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी
हेलो।
जी
संदीप जी नमस्कार।
जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
जी पठान खान गज्जू बोल रहा हूँ, कितनौरिया बाड़मेर।
गज्जू साहब बाड़मेर राजस्थान से बोल रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद फोन लगा है आपका, स्वागत है। बताइए, सब सुन रहे हैं आपको, क्या सोचते हैं इस विषय पर, CBI में जो विवाद चल रहा है?
मैं तो यही सोचता हूँ कि CBI एकदम निष्पक्ष और अच्छी और बढ़िया इस जांच वाली थी, लेकिन राजनीतिक के दफ्तर में पढ़ने से ये भ्रष्टाचार चल गए। क्योंकि राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए इनको, और राजनेता जैसे ही बड़े बड़े जो फैसले करते हैं, बड़े बड़े जो टीवी हुई उसको, इसलिए ही दबाव में आती है।
गज्जू साहब बाड़मेर राजस्थान से हमारे श्रोता राजनीति की बात कर रहे हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं इन्हीं की बात से। और हमारे पास इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान है, पहले उस बयान को सुनते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
CBI डायरेक्टर को हटाने का काम या अपॉइंट करने का काम 3 लोगों की कमेटी करती है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। CBI डायरेक्टर को प्राइम मिनिस्टर ने रात के 2 बजे हटाया। This is an insult to the Constitution of India. It is illegal. It is an insult to the Chief Justice of India, and it is an insult to the Leader of Opposition of India. Prime Minister ne 2 baje ye kaam isliye kiya kyunki CBI Director Rafael mamle par inquiry shuru karne ja rahe the.
Rahul Gandhi ke is daave mein Ajay ji, aapko kitna vajan lagta hai, aur jo wo tark de rahe hain ki jis tarah se raaton raat 2 baje CBI ke director ke khilaf sarkar karwai karti hai, और वो इसका संबंध रफाल डील से जोड़ रहे हैं।
देखिए, रात में 2 बजे हो या सुबह हो, सिर्फ उसका अंतर इतना होता है कि रात में 2 बजे थोड़ा सा ये लगता है कि आखिर क्यों किया गया,
ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी
और क्यों नहीं एंटिसिपेट किया गया, तो एक थोड़ा सा सवाल हो सकता है। लेकिन सरकार को पूरा राइट है, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन कोई मेरे पास तो होती नहीं है, इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा होती है। और सीबीआई चीफ की जो हरकतें थीं वो कोई ऐसी नहीं थी कि जो बहुत अच्छी हों, जिस पे कि बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट कर सकें। रही बात राफेल डील की, तो राफेल डील पे राहुल गांधी का ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है जिसका कोई वो नहीं है। सीबीआई चीफ अचानक जाके राफेल डील पे कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सबको उसमें डाल देंगे, तो ये बोलना हमें तो आश्चर्य लगता है कि पता नहीं ये लोग, ठीक है राजनीति उसमें होती है तो राजनीति का आपको जो एडवांटेज है वो लीजिए, लेकिन राफेल डील सीबीआई चीफ अकेले क्या कर लेंगे।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, अरुण शौरी, हम उनका जिक्र भी करेंगे कार्यक्रम में आगे, उनकी आवाज़ भी सुनेंगे जिसमें उन्होंने राफेल डील और इसी सब से जोड़कर अपनी राय रखी है। उससे पहले और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हेलो
जी। हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
हाँ सर, हम सुमन कुमार सिंह बोल रहे हैं, अररिया बिहार से।
सुमन जी अररिया बिहार से बोल रहे हैं, मुझे लगता है आपके पीछे रेडियो ऑन है।
जी सर, नहीं सर।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज़ गूंज रही थी पहले। तो सुमन जी, ये बताइए कि इस पूरे विवाद में क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं इसे, क्या लगता है सरकार, ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है सीबीआई को लेकर, इसमें सरकार की कितनी भूमिका है, सीबीआई की अपनी कितनी भूमिका है?
सर देखा जाए तो सीबीआई एक सत्ता पक्ष की कठपुतली बनकर रह गई है, और इसमें जो है निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं रह गया। इसको हम कहना चाहते हैं कि राजनीतिक से प्रेरित है, को राजनीतिक से अलग रखना चाहिए, जिसमें कि सभी व्यक्तियों का विश्वास बना रहे।
अररिया से हमारे श्रोता सुमन जी कह रहे थे कि राजनीति की सत्ता पक्ष की कठपुतली बन गई है सीबीआई। अजय जी, क्या वजह लगती है आपको कि भारतीय जनमानस के मन मानस पटल पर यह बात इतनी गहरी अंकित हो गई है कि उसे लगता है कि सीबीआई सत्ता पक्ष की कठपुतली बन गई है?
ये आज का नहीं है, ये पिछले 30 साल का इतिहास है। 30 साल से अगर आप देखें तो सीबीआई इसी तरह हुआ है, जिसमें कि सरकार ने उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है और किसी ने भी इसको रोका नहीं। उसमें दुख की बात यह है कि जब एनडीए आई तो लगा कि शायद इसको रोका जाएगा और इसमें ये होगा कि इसमें एक ऑटोनॉमी दी जाएगी जिसमें अच्छे ऑफिसर्स लाएंगे, लेकिन इनके यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। इनके टाइम में भी उसी तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, जो कि अच्छी बात नहीं है, और जिसका कि आप साफ देख रहे हैं कि जिस तरह हो रहा है, इस तरह तो आज तक इंडिया में हुआ ही नहीं है कि सीबीआई और रॉ और आईबी और ईडी और ये सारे एजेंसीज आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो कभी नहीं हुआ है। तो ये उसी का आप जो एक आउटकम देख रहे हैं, जो कि इस रूप में आ रहा है।
ये एक सवाल मेरे जहन में आ गया आपकी बात से, ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन इस सरकार में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो क्या इससे हम ये निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए कि एजेंसियों पर, अपनी ही एजेंसियों पर सरकार की पकड़ कमज़ोर हुई है, ढीली हुई है?
तो इसमें तो कोई वो भी नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है, शक नहीं है इसमें। ये तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने कभी सुना है कि सीबीआई चीफ आईबी के कुछ लोगों को अपने सिक्योरिटी के लोगों को भेज के और उनको खींच के अंदर कर लें, ये तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि आईबी के लोगों का काम होता है वहाँ घूमना, और स्नूपिंग के नाम पे आप उनको खींच के अंदर कर लें, ये तो मतलब ये असंभव है। ईडी सीबीडीटी के लोगों के अगेंस्ट जाए,
ये दो परस्पर एजेंसियों के बीच में तालमेल की कमी भी दिखाता है।
सारी पांचों एजेंसीज का, आप जितनी एजेंसीज देख रहे हैं सारी आपस में लड़ रही हैं, तो मतलब इसमें आप कोई शक नहीं है, इसको कहने में तो कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने इनको इतना छोड़ दिया है कि उनके यहाँ आपस में ही मारपीट हो रही है।
सरकार ने छोड़ दिया है कि आपस में ही मारपीट हो रही है, और सीबीआई पिंजरे में बंद तोते के समान है। 5 साल पहले की बात है जब साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाले के संबंध में सुनवाई के दौरान ये बात कही थी। और अभी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को रातों रात जिस तरह से छुट्टी पर भेजा, जिसके विरोध में आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो क्या ये माना जाए कि तोते ने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की है?
नहीं, देखिए, आलोक वर्मा का केस इंडिविजुअल केस है। डायरेक्टर आलोक वर्मा और उनके जो अधीनस्थ थे, जो सेकंड ऑफिसर, दोनों में झगड़ा था, राकेश अस्थाना, दोनों को छुट्टी पे भेजा गया है। तो उसमें कोई ये स्थिति नहीं है कि सीबीआई के ऑटोनॉमी के लिए वो झगड़ा कर रहे थे। वो पिछले 2 साल से थे और सारे वो चीज़ें उन्होंने की हैं जो सरकार चाहती थी। अचानक रिटायरमेंट से जस्ट पहले उनको ऑटोनॉमी याद आ गई, तो इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। उनके अपने इंटरेस्ट का था जो वो कर रहे थे, बाकी सीबीआई की ऑटोनॉमी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये मेरा मानना नहीं है।
चलिए अगले श्रोता के पास चलते हैं। कौन श्रोता जुड़ गए हमसे इस समय?
हेलो
जी,
जी मैं मोहम्मद जुनेद अली सतना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जुनेद साहब कैसे हैं?
जी जी बहुत बेहतर संदीप साहब।
चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जुनेद साहब बताइए कि क्या राय रखते हैं आप, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे विवाद को?
साहब एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि एक लंबे समय से सीबीआई पर कुछ ना कुछ आरोप लगते रहे, लेकिन ये जो मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है तो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो भ्रष्टाचार या अनियमितता के जो आरोप थे उसका कुछ ना कुछ अंश मौजूद है। कि आप देखिए कि जो शीर्ष मतलब स्तर के जो अधिकारी आपस जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, तो उसको प्रमाणित करता है कि नहीं भ्रष्टाचार या जो चीजें हैं जो गलत तरीके से चली जा रही तो मौजूद है। दूसरी बात ये है, आप देखिए कि पूरा घटनाक्रम रोड तक आ गया कि आलोक वर्मा साहब के मतलब जो रक्षक थे उन्होंने एक सीबीआई वाले को जिस तरीके से पकड़ा, रोड में घसीटा, इसने इस मतलब इस घटनाक्रम को इस मुल्क नहीं पूरी दुनिया ने देखा। तो एक जो भारत की जो छवि थी इस मामले में बहुत ही मतलब कि धूमिल कही है या इसका स्तर बहुत गिरा। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी जो शीर्ष मतलब जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उसका मतलब कि जो क्रेडिबिलिटी है वो तो भंग हुई और उसका जो स्तर गिरा, इसको मतलब लगता है कि इसको वापस मतलब वापस हासिल करने में उस स्तर को मतलब एक जमाना लग जाएगा। और जो विश्वास टूटा, अब जनता का विश्वास भी टूट गया और चीजें भी, अब उसकी बात में उतनी मतलब गहराई और वजन नहीं रहेगी सीबीआई की कि पहले होता था सीबीआई कुछ जांच करे तो उसमें मतलब सच सामने आ जाएगा। लेकिन अब ये संदेह मतलब हमेशा बरकरार रहेगा कि जो जांच हुई है कितनी निष्पक्ष हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी। दूसरी बात है कि राजनीतिक दखल बहुत साफ तौर से देखने को मिला इसमें। एक तो जो स्पेशल जो निदेशक साहब थे अस्थाना साहब, उनकी नियुक्ति थोड़ी सी मतलब एक भ्रम पैदा करती थी या समझ आता कि ये जरूरी थी भी कि नहीं थी। तो ये चीजें बहुत किलकी, जो मतलब दुखद है कि ये घटनाक्रम मतलब पूरे देश की जनता के लिए मतलब एक निराशाजनक ही मतलब घटना कहलाएगी।
बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आगे भी फोन करके इसी तरह अपनी बात रखिएगा। अगले श्रोता के पास चलने से पहले अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही जुनेद अली साहब ने, सतना मध्य प्रदेश से फ़ोन कर रहे थे। ये कह रहे थे कि विश्वसनीयता चली गई, उसको बहाल होने में बहुत वक्त लगेगा। ये जो पूरा सरकारी सिस्टम है, तमाम तरह की एजेंसियाँ हैं, प्रशासनिक तंत्र हैं, जब ऐसी कोई घटना सामने आती है, सीबीआई जिसका एक ताज़ा उदाहरण है, पूरे सिस्टम में क्या मैसेज जाता होगा ऊपर से नीचे तक?
आपने बिल्कुल सही मतलब आपका ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सिस्टम में मैसेज ये जाता है कि एक इनडिसिप्लिन के बाद भी हम जी सकते हैं। और ये मैसेज इतना डाउन जाता है, इतना डीप डाउन चला जाता है कि उसके बाद वो फिर उसको वापस आने में बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार भी जब ये दो लोगों का झगड़ा हुआ है तो आप इतना मान के चलिए कि ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये लगातार की जो हिस्ट्री रही है इस एजेंसी की और इस एजेंसी के अंदर ऑफिसर्स और डायरेक्टर को ले आने की, ये उसका आउटकम है।
मतलब तो, सरकार ने जो बोया वो अब
बोया वही काटा है,
वही काटा है। अगले एक कॉलर को कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े वरिष्ठ नेता थे, अभी भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में मंत्री रहे हैं, अरुण शौरी, वो इस मामले में एक नया पहलू जोड़ते हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं।
नरेंद्र मोदी जो कि सीबीआई के डंडे से डरा रहे थे, तो यही हुआ है कि भी उनको डर था कि भी अगर उनका जो खास आदमी है अस्थाना उस पर बहुत प्रेशर पड़ा तो कहीं वो चीजें डिस्क्लोज ना हो गई। उनको ये डर लगा कि अगर आलोक वर्मा जैसा इंडिपेंडेंट ऑफिसर राफेल पर इंक्वायरी कर देता है तो फिर बेचारों की बहुत मुश्किल आ जाएगी।
अजय जी, मैं देख रहा था कि आप अरुण शौरी की आवाज़ को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत पकी हुई आवाज़ है। कितने सहमत हैं आप अरुण शौरी की इस बात से कि सरकार पहले दूसरों को डराती थी सीबीआई से, अब उसे ही डर लग रहा है?
नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि अरुण शौरी को डायरेक्टर इंडिपेंडेंट लग रहा है क्योंकि डायरेक्टर ने अरुण शौरी प्रशांत भूषण दोनों को टाइम दिया था, उनसे लिया था। यानी जो व्यक्ति अरुण शौरी से मिले वो इंडिपेंडेंट है और जो ना मिले वो नहीं है। तो ये डेफिनेशन उनकी अपनी है और उनकी रही है, तो हमें उससे मैं उससे एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ।
अगले कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद कुछ सवाल और बाकी हैं आपके लिए। अगले श्रोता कौन है हमारे साथ?
हेलो
जी।
जी सर, दिव्येश्वर अवस्थी कानपुर से बोल रहे हैं।
जी अवस्थी जी, कहें क्या सोचते हैं इस विषय पर आप?
ये सर, हम ये कहना चाहेंगे कि सीबीआई की कार्यशैली पर काफी पहले से ही सवाल उठते आ रहे हैं, और ये जो अभी हालिया मामला हुआ इसके बाद तो आम लोगों के बीच में भी इसकी विश्वसनीयता काफी गिरी है, और अब इसको सुधारने के लिए कम से कम दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों को पूर्णतः लागू करना चाहिए, जिससे कि लोकायुक्त की नियुक्ति संभव हो सके और इन बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच हो सके।
बहुत शुक्रिया अवस्थी जी। तो ये हमारे श्रोता अजय जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि लोकायुक्त की नियुक्ति। इसी से मैं बात जोड़ लेता हूँ अपने सवाल में कि क्या ये माना जाए कि सरकार से चूक हुई है लोकायुक्त के मामले में, या इस तरह के कुछ जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ गया?
देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बहुत साफ है कि करप्शन को ख़त्म कैसे किया जाए इस पे पॉलिटिकल कॉन्सेंसस या पॉलिटिकल रूप से एक ईमानदारी का अभाव है, और वो ईमानदारी का अभाव अगर आज दिख रहा है तो पहले भी दिखा था। दिक्कत यह है कि आज भी दिख रहा है, जबकि जब 14 का इलेक्शन हुआ था, 14 के इलेक्शन से पहले ये लग रहा था कि अगर NDA आती है तो वो ईमानदारी का अभाव नहीं दिखेगा, पर वो उतना ही दिख रहा है जितना पहले दिखता था। ये बात है जो कि साफ सामने आ रही है, और इसको हमें लग रहा है कि ये साफ दिख रही है, इसमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए।
क्या ये माना जाए कि CBI का जो झगड़ा है, ये पूरा प्रकरण है, मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है सरकार की छवि पर?
देखिए, हम ये इस मानने को तैयार नहीं है कि CBI के चीफ को हटने से या CBI के चीफ और राफेल डील से कोई वोट में अंतर पड़ता है। वोट से कोई इसका वो नहीं है, वोट तो किसी और चीज़ों से पड़ता है। वोट के टर्म्स पे मत देखिए, सरकार के इमेज के टर्म्स पे देखिए। तो इमेज पे डेंट तो होता ही है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप भी जैसे पहले के लोग थे वैसे ही आप भी हैं, तो इसका मतलब आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इमेज पे फ़र्क होगा, वोट के टर्म्स पे हमें लगता है कि इसका ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसको हमें उस रूप में देखना भी नहीं चाहिए।
अच्छा, कुछ सवाल ये भी उठता है कि मोदी सरकार ने CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाकर गलती की, क्या ये बात सही जान पड़ती है आपको?
नहीं, मुझे नहीं लगता है। हमें लगता है कि जितना लेट इन्होंने किया था और जितना दूर तक ये झगड़ा गया था, उसमें सिर्फ एक आदमी को नहीं हटाया, जो दोनों लड़ रहे थे उनको हटाया, वो डिसीजन तो बिल्कुल सही लगता है हमें।
अच्छा, कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि CBI में आंतरिक असंतोष है कई मामलों को लेकर, उसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आई हैं।
नहीं, आंतरिक असंतोष इन दो ऑफिसर्स में तो नहीं हो सकता, वो नीचे के लेवल पे हो सकता है, जो कि जॉब से रिलेटेड इशू का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, इमोल्यूमेंट्स का होगा। लेकिन दो जो ये टॉप ऑफिसर्स थे, इनमें तो कोई इस तरह का असंतोष नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक ढंग से आप यूं मान लें कि पर्सनल ईगो का झगड़ा था, और जो स्नोबॉल करता गया और बाकी एजेंसीज भी उसमें आ गई। एक तरह से तो जो आपने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं उसने छोड़ दिया था और वो उनको दिक्कत किया।
घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं दे रही हैं। अब इंडिया बोल को हम यहीं विराम देंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह, आप स्टूडियो में आए, चर्चा को सार्थक बनाने में मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
और शुक्रिया हमारे तमाम सुनने वालों का। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के साथ हाजिर होंगे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।